हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युग और कृषा दूसरे पड़ाव पर डायमंड्स के लिए आए हुए थे। उन्हें वो डायमंड्स तो मिल गए थे, लेकिन वो दोनों सेकंड पड़ाव के बेसमेंट में फंस चुके थे। वहां से निकलने के दो रास्ते थे। पहला मंदिर के अंदर था, जो युग ने पहले ही बंद करवा दिया था, और दूसरा रास्ता ऊपर की तरफ जाकर एक बड़ा सा दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा इस हिसाब से बनाया गया था कि उसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। युग और कृषा अंदर फंस चुके थे और बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। कृषा ने खुद को इस तरह की सिचुएशन में पहली बार पाया था। उसकी आंखें नम होने लगी थीं और वो युग को इस तरह देख रही थी जैसे उसे फिर कभी युग का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। कृषा युग के पास आई और उसके गले लगकर बोली, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ। फिर मुझे यहाँ इस बंद कमरे में मौत भी आ जाएगी तो उसका गम नहीं होगा। कृषा की बात सुनकर युग ने आइज रोल की और उसे खुद से अलग कर दिया। युग ने कृषा को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम मुझे इतना कम समझती हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मेरे लिए नया है या मुझे पहले से नहीं पता था कि यहाँ क्या खतरा हो सकता है? तुम्हारे लिए ये चीज नहीं हो सकती है कृष, मेरे लिए नहीं है। कृषा के इस तरह डीमोटिवेट होने पर युग को गुस्सा आ गया था। तो तुम बताओ हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से बाहर गए तो भी बाहर मौजूद सिक्योरिटी हमें मार डालेंगी, कृषा ने जवाब में कहा। युग ने कृषा को देखकर सार्कास्टिक स्माइल दी और सिर हिलाकर कहा, हम दोनों को नहीं, सिर्फ मुझे। डोंट वरी, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कृषा ने चिल्लाकर पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी? बोलते हुए कृषा रोने लगी। और सीरियसली, तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मैं मर जाऊंगा? कैसी वाइफ हो तुम, अपने पति के मरने के बारे में सोच रही हो? कहीं सच में रूहान खुराना के साथ रहने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? कृषा पहले से ही परेशान थी। ऐसी सिचुएशन में युग गुस्सा करके उसे और डाउन नहीं करना चाहता था। उसने कृषा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। युग ने कृषा के बालों को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकाल कर लेकर जाऊँगा, पर अपना वादा मत भूल जाना। तुमने ट्रेनिंग लेने के लिए हाँ कही थी। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुमसे अलग नहीं रहना। क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे? बोलते हुए कृषा युग से अलग हो गई। युग ने हाँ में सिर हिलाया तो कृषा ने धीरे से कहा, मुझे राणा मैंशन में पूरी फैमिली के साथ रहना है। प्लीज मेरी इस बात को मान लो, मुझे सबके साथ अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब तुम्हें मान्या राणा के साथ में रहना है? दादू तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आते, फिर भी तुम्हें उस घर में रहना है? युग ने हैरानी से पूछा। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मान्या राणा को सबसे अलग कर दो तो मुझे बाकी लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी फैमिली के बीच में नहीं रही हूँ, प्लीज मेरी इतनी सी बात मान लो। ठीक है, हम मुंबई में रह सकते हैं, लेकिन मेरे घर पर रहेंगे, ना कि राणा मैंशन में, युग ने जवाब में कहा। वो समझ सकता था कि लंदन में कृषा को कितना अकेलापन महसूस होता होगा। वहाँ युग के साथ उसने ज्यादा टाइम नहीं बिताया था, फिर भी वो ज्यादातर टाइम अकेली ही थी। कृषा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम मेरी आधी अधूरी बात को नहीं मान सकते। मैंने तुम्हें राणा मैंशन में रहने के लिए कहा है, तो हम वहीं पर साथ में रहेंगे, और तुम मुझे हमारे फ्लोर से निकलने की परमिशन भी दोगे। ठीक है, इस बारे में बाद में बहस कर लेंगे, पहले यहाँ से निकलने का रास्ता सोचते हैं। तुम रिलैक्स करके यहाँ बैठो, मुझे इस पूरी जगह को एक बार अच्छे से देखना होगा ताकि यहाँ से निकलने का रास्ता देख सकूँ, युग ने बात को टालते हुए कहा। वो कृषा को वहाँ छोड़कर दूसरी तरफ जाने को हुआ, तभी कृषा उसके पीछे आते हुए बोली, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुमसे दूर रहकर जान चुकी हूँ कि तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। ये टाइम रोमांटिक बातें करने का नहीं है कृष, प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। चारों तरफ इधर उधर देखो, कहीं तो कोई ना कोई वेंटिलेशन एरिया बनाया हुआ होगा, वरना इस बंद जगह पर इतने लोग आराम से नहीं रह सकते। युग उस जगह को काफी गौर से देखते हुए चल रहा था, कृषा भी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वहां लगे सीसीटीवी कैमरास के जरिए ब्रेड और उसकी टीम को युग के डायमंड्स लेने की बात पता चल चुकी थी। युग अच्छे से जानता था वहां पर कैमरा लगे हुए हैं, उसने उन्हें जानबूझकर नहीं तोड़ा। ब्रेड ने कैमरा की तरफ देखकर कहा, वो लोग वहां पर फंस चुके हैं, यही सही मौका है जब मिस्टर सिंघानिया को कॉल करके उसे ट्रैप करना होगा। ब्रेड की बात हत में ही हुई होगी कि उसने देखा युग कैमरा के सामने आया और एवल स्माइल दी। ब्रेड कुछ समझ पाता उससे पहले युग ने एक एक करके सभी कैमरा पर गोली मार दी थी और इसी के साथ ब्रेड का उस जगह से कनेक्शन टूट चुका था। ब्रेड जोर से चिल्लाकर बोला, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, ये हमारे पास अच्छा मौका है जब वो वहाँ पर फंसा हुआ है। ब्रेड ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अमृता को कॉल किया। उसने दूसरे पड़ाव की सारी स्थिति के बारे में उसे बता दिया था। अमृता के साथ साथ आदित्य सिंघानिया भी उसकी बात सुन रहे थे। आदित्य सिंघानिया ने अमृता की तरफ देखा और फिर ब्रेड से कहा, कोई बात नहीं, अगर उसने कैमरा तोड़ भी दिए हैं, वो वहाँ पर फंस चुका है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ भी कर सकता है। अमृता, तुम ऐसा करो, सिक्योरिटी टीम को कॉल करो और जल्दी से जल्दी वहाँ का दरवाज़ा खुलवाओ। याद रखना, कृषा को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। बाकी युग राणा की लाश मुझे हर्षवर्धन राणा के घर पर भिजवानी है, बोलते हुए आदित्य के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। अमृता उनके इस डिसीजन से हैरान थी। भले ही युग ने सब कुछ गलत तरीके से किया होगा, लेकिन दूसरा सच ये भी था कि कृषा युग से प्यार करती थी और अब उन दोनों की शादी हो चुकी थी। कुछ भी करने से पहले अमृता ने आदित्य जी से पूछा, क्या उसे मारना सही होगा? हमें हमारे डायमंड्स वापस मिल जाएंगे और हम आगे की चीज सोच लेंगे, पर मारना सही डिसीजन नहीं है। आपने पार्टी में देखा होगा, कृषा उससे अटैच हो गई है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लड़के का मेरी पोती के साथ में कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। वो अभी उम्र में छोटी है, अपना सही गलत नहीं समझ पाती, तो हम बड़ों का फर्ज बनता है उसे समझाने का। उसे घर आने दो, फिर मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। तुम वही करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है, आदित्य सिंघानिया ने सख्त आवाज में जवाब दिया और वहाँ से चले गए। वो अपने फैसले पर अटल थे, अमृता को उनकी बात माननी ही पड़ी। उसने तुरंत हेड सिक्योरिटी को कॉल किया और दूसरे पड़ाव के दरवाजे के उस पार सबको सतर्क रहने के लिए कहा। अमृता और आदित्य भी ताई आन विलेज जाने के लिए निकल चुके थे। वहीं युग और कृषा अभी भी दूसरे पड़ाव में थे। उन्हें लगभग आधा घंटा हो गया था वहाँ पर फंसे हुए और युग अच्छे से जानता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वहाँ पर घूमकर हर एक चीज देखते हुए युग की नज़र वहाँ लगी एसी पर गई। उसने नोटिस किया कि वो जगह फुली एयर कंडीशन्ड थी और इस तरह की जगह को मैनेज करने के लिए वेंटिलेशन की जरूरत होती है। युग दौड़कर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ गया तो उसे एक छोटे डब्बे जैसा रोशनदान दिखाई दिया जिसे वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था। उसे देखकर युग ने राहत की सांस ली। कृष, जल्दी से यहाँ आओ, रास्ता मिल गया है, युग ने कृषा को आवाज लगाकर बुलाया।
कृषा जल्दी से दौड़कर ऊपर आई। वो वेंटिलेशन एरिया ज्यादा ऊपर नहीं बनाया हुआ था। युग ने उसके दरवाजे को तोड़ा और फिर कृषा को ऊपर उठाते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कृष, और जानता हूँ कि तुम्हें अंदर परेशानी होगी, तुम्हें बस क्रॉल करके अंदर जाना होगा, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूँगा और हम जल्द से जल्द बाहर की तरफ पहुँच जाएंगे। लेकिन युग, मैं इतनी कम जगह में नहीं चल पाऊंगी, मैंने पहले ये कभी नहीं किया है, कृषा ने नम आँखों से युग की तरफ देख कर कहा। युग ने कृषा की आंखों में देखा और जवाब में कहा, जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम्हें चोट भी लगेगी, पर मेरे लिए कर लो, मैं उनके आने का वेट भी कर सकता हूँ। अब तक उन्हें पता चल गया है तो उन्होंने सिक्योरिटी को बाहर भेज दिया होगा। मैं नहीं जानता बाहर कितने आदमी हैं, मैं उनका मुकाबला कर लूंगा, लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं रहने वाला, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? कृषा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर उसे छोटी सी सुरंग जैसी जगह में क्रॉल करने की कोशिश करने लगी। युग भी ऊपर चढ़कर उसके पीछे आ गया था। वो जगह बिल्कुल बंद थी और इतनी ज्यादा तंग थी कि उन दोनों को काफी दिक्कत हो रही थी। कृषा के दोनों हाथों और घुटनों में चोट लग चुकी थी। हालांकि युग आसानी से क्रॉल कर पा रहा था क्योंकि उसने पहले भी ये सब किया हुआ था। माफिया वर्ल्ड में आने से पहले उसकी हर तरह से ट्रेनिंग हुई थी। युग अकेला उस सुरंग में होता तो वो उसे लगभग 15 मिनट में पार कर लेता, लेकिन कृषा के आगे होने की वजह से उन्हें वो उतनी सी सुरंग पार करने में 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग गया था। बाहर मौजूद सिक्योरिटी पिछले 1 घंटे से युग की किसी हरकत का इंतजार कर रही थी। उन्हें लगा कि युग बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खटखटाएगा या फिर उसे गोली से खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड कॉल के साथ अमृता से कनेक्ट था। उसने कॉल पर कहा, वो इतनी देर तक शांत बैठने वालों में से नहीं है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। ठीक है, चले जाओ, पर याद रखना, युग को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए और ना ही कृषा को, अमृता ने धीरे से जवाब में कहा। आदित्य सिंघानिया के कहने के बावजूद उसने युग को मारने के ऑर्डर नहीं दिए थे। हेड सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी बात पर हामी भरी और उन्होंने तुरंत उसका दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गए तो सबके सब हैरान रह गए। अंदर कोई नहीं था। उन्हें ढूंढते हुए जब हेड सिक्योरिटी गार्ड ऊपर की तरफ आया तो उन्हें वेंटिलेशन का गेट टूटा हुआ मिला। उससे वो समझ गया था कि युग वहां से निकल गया है। उसने सारी बात अमृता को बताई। युग और कृषा के भागने की बात सुनकर भी ना जाने क्यों अमृता को गुस्सा नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सख्त आवाज में कहा, मुझे पता है कि वो रास्ता कहाँ पर खत्म होता है, वहाँ जाकर उन्हें ढूंढो। अमृता ने उन्हें दूसरे पड़ाव का पूरा नक्शा मेल कर दिया था। उसमें वो वेंटिलेशन एरिया कहाँ जाकर खत्म होता था वो उन्हें पता चल गया था। वो रास्ता दूसरे पड़ाव से 15 मिनट की ही दूरी पर था। सिक्योरिटी गार्ड अपनी टीम के साथ भाग कर गए। उन्हें युग और कृषा वहां से जाते हुए दिखे। अमृता के मना करने के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड ने अपने शार्प शूटर से उन्हें शूट करने को कहा और उसने जल्दबाजी में गोली चला भी दी थी। उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। इतनी दूर से भी शूट करने के बावजूद उसका निशाना बिल्कुल सही लगा था।